किया है?
बहुत काम किया है।
अच्छा अच्छा दिन रात
मासूमियत रहे।
अच्छा
तो अगर मासूमियत नहीं रहेगी तो कोई करीब नहीं आएगा ना।
हाँ,
तो मासूमियत रहनी चाहिए।
हाँ, फिर उस चक्कर में फंसाते हैं लोगों को।
वो बात की बात।
और भाई सही, आपके मार तो खम में कैसे चल रहे हैं मामलात इसके जो है, क्योंकि चोरियां तो बड़ी हो रही हैं वहां पे। अभी परसों भी चोरी हुई है आपके मार खम में। आपको पता है इस वक्त क्या चोरी करके लेके गए हैं?
हाँ,
फरारी चोरी करके ले गए हैं मजीद भाई।
तो भाई
सोचे जरा भाई,
अगर आप फरारी को वहां ऐसी जगह पार्क करेंगे जहां पर लोगों को नजर आ रहा है, जैसे कि
घर के बाहर
पाकिस्तान
नहीं, यानी कि आपके घर में आके पार्क कर दें
पाकिस्तान में, जैसे कि वो है कि भाई आप जी मुझे किसी ने लूट लिया, भाई लूटेगा क्यों नहीं, कि आप जो है अपना पूरा सोने की दुकान बन के जा रही है तो आपको तो लूटेगा।
ये तो कानून नहीं हुआ ना
कानून।
व्हाट इज दिस?
ऐसे लोग तो हर जगह, आप यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर वेरी गुड पीपल, मगर ये कि कुछ ऐसे होते हैं जरूरतमंद जिसको फरारी की जरूरत है, तो अब उसने क्या करना है? मैं खरीद तो नहीं सकता।
हाँ।
तो भाई अब दूसरा रास्ता क्या है? किसी और ने खरीदा है, मेरी दो गाड़ियां उठा के ले गए।
हाँ।
तो मैं कहता हूँ यार अब उससे पूछना चाहिए भाई तीसरी गाड़ी क्या चाहिए तुझे, ताकि मैं वही ले आऊं, क्योंकि बजाय इसके कि आप इतनी मेहनत करें।
हाँ।
आप मुझे पहले ही बता दें कि मुझे ब्लैक कलर की मर्सिडीज चाहिए,
एस क्लास, वो भी
जीएलई,
वो भी एस क्लास,
एस क्लास। तो वो आप अगर बोलेंगे मुझे तो मैं वो लेके आ जाऊंगा ताकि आपकी आपको तकलीफ ना हो। अब मैं कोई गाड़ी खरीद के लेके आऊँ आपके,
आपको पसंद ना आए,
आपको पसंद आए ना आए, और पता लगा 6 महीने तक मैं वही गाड़ी चला रहा हूँ।
हाँ।
तो मतलब क्या फायदा है उसका?
हाँ।
मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी गाड़ियाँ चेंज करते रहें,
चेंज करते रहें। बिल्कुल माजिद भाई, देखें
जल्दी जल्दी,
इसीलिए माजिद भाई आप देख लें, अब मेरी समझदारी को तो आप सलाम करेंगे ना है
जी।
देखें कैसी मैंने कटारा गाड़ी रखी हुई है, किसी को दो भी के भाई साहब मुफ्त में ले जाओ, वो मुफ्त में उठा के लेके जाने को
नहीं। आप उसका भी तरीका होता है कि आप उसमें गैस पूरी भरें,
अच्छा
फुल टैंक होनी चाहिए,
अच्छा टैंक
फुल टैंक होनी चाहिए, चाबियों को एक दिशा में लगाएं,
अच्छा अच्छा
ऑन करके रखें,
अच्छा अच्छा ठीक है,
फिर तो आप इनवाइट कर रही है ना,
अच्छा
तो फिर वो ले जाएगा, फिर आप
हाँ।
दूसरी गाड़ी ले,
दूसरी गाड़ी, अच्छा ये तरीका है,
तरीका
गुरुजी मैंने, सॉरी मुझसे गुरुजी मैंने आपसे तरीका नहीं पूछा, मैंने पूछ लिया,
अब देख लेना।
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल,
फिर हर 6 महीने भी ये काम किया करें, और
अच्छा,
हर 6 महीने 8 महीने के बाद आपकी गाड़ी चोरी होती रहेगी।
ओके।
और आप नई नई गाड़ी चलाएंगे, लोग भी देखेंगे यार ये हमेशा नई नई गाड़ी चलाते हैं, राज ना बताना किसी को।
लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा है, इसमें तो लोग समझेंगे 770 वाले इसको बड़े पैसे दे रहे हैं।
हाँ तो दे रहे ना वो इसमें क्या शुबा है, वो दे रहे हैं तो वो लोग भी आएंगे अप्लाई करने के लिए जॉब।
ठीक है मासी, आज से मैंने इस काम पे ना जरा थोड़ा काम
लग जाना है,
काम करना है,
लग जाए आप
बस, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, चलो जी हम अपनी जो है आपके साथ वो पाए जरा थोड़ी सी अपनी कहानी जो है, और कहानी हमारी बस बड़ी मुख्तसर है और बड़ी प्यारी है, और वो ये है कि प्लीज हमारी वेबसाइट पे जाएं, जो कि इंतहाई प्यारी है और बड़ी ईजी टू नेविगेट है और वन स्टॉप शॉप है, तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे लाइव टीवी देख सकते हैं, रेडियो, ब्रेकिंग न्यूज, ताज़ा उर्दू की खबरें, लोकल न्यूज हैं बेशुमार यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं, फिर हेल्थ के टिप्स हैं आपके लिए, मेडिसिन कौन कौन सी आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रही हैं, लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट की बड़ी एंटरटेनिंग स्टोरीज होती हैं वो भी आप देख सकते हैं, और फिर जनाब यूथ जोन में एज एंड वेन स्टोरीज आती हैं हम डालते हैं, और कैनेडा की न्यूज हैं, स्पोर्ट्स की न्यूज हैं, तो बहुत सी कहानियां हैं यहाँ पे, तो वो कहानियां जो हैं आपको अगर चाहते हैं तो फिर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं और वहां पे पढ़ें, और राइट साइड पे आपको नजर आएंगे हमारे एडवर्टाइजर्स, उनको आप रोक सकते हैं टैप करके और आपको वहां पे इजीली नंबर मिलेगा। ठीक है जी, तो ये है हमारी आज की स्टोरी। ओके जनाब माजिद भाई, इसका मतलब है कि अब हम अपना कार्यक्रम जरा थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं, तो हमारी जो पहली स्टोरी है आज की वो है, वो तो आपको पता है हम रोज आपको बताते हैं कि कौन कौन सी रिसर्च आ रही है, तो अकॉर्डिंग टू द न्यू रिसर्च जो आज की है उसने फिर से नैनोज ने, अब नैनोज जो है ना पता नहीं इनकी क्या टेक्नोलॉजी इनके पास क्या है, मुझे अभी तक समझ नहीं आई, क्योंकि रोज ये चेंज कर देते हैं, कल कह रहे थे ओ जी लिबरल्स जो है वो आगे चल रहे हैं, आज जो आई है इनकी नैनोज की रिसर्च ये कह रहे हैं जी ये टू वे रेस है। ठीक है जी, और ये जो है लिबरल्स 30.5% पे है और कंजर्वेटिव अब आगे चले गए 31.2% पे, एनडीपी 21.4% पे,
दिस इज नेशनल
नेशनल हाँ नेशनल नेशनल नॉट ओंटारियो और या जीटीए नहीं दिस इज नेशनल
नेशनल
और पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा जो है वो 6.8 पे है विच इज बैड न्यूज फॉर कंजर्वेटिव्स वेरी वेरी बैड न्यूज क्योंकि ये 5.5 के ऊपर फेयर कर रहे थे और जनाब अब इससे भी पीछे चली गई है ब्लॉक की बैकवा जो है 6.2% पे एंड ग्रीन पार्टी 3.47 यानी कि ब्लॉक की बैकवा जो होती थी वो चौथे नंबर की पार्टी होती थी अब वो जी जनाब पांचवें नंबर पे चली गई है पीपल्स पार्टी इज रियली कैचिंग अप मुझे पता नहीं है मैक्सिम बर्नियर जो हैं अब तो हमारे पास दिन नहीं रहे हैं लेकिन उनको वैसे बुलाना चाहिए था कि उनसे पूछते कि भाई आप ऐसी क्या गिदड़सिंगी लोगों को दिखा रहे हैं कि लोग आपके पीछे लगते जा रहे हैं बहुत इनकी आपको पता है हमने कैसे शुरू की थी 3% से शुरू की थी फिर उसके बाद 3.5% फिर 4% ये ब्लॉक के बैकवा से काफी पीछे थे
मैक्सिम बर्नियर को लोग जानते हैं ना
लोग जानते हैं न्यू पार्टी है ना मगर न्यू पार्टी है
पार्टी नहीं है मगर मैक्सिम बर्नियर को लोग
बंदा पुराना है
बंदा पुराना है एंड ही वॉज वेरी एक्टिव इन हमारे उसमें भी और फिर वो उनकी कुछ नाइतफाकी की वजह से छोड़ भी दिया उन्होंने तो उसकी वजह से भी इनका नाम लोगों के सामने आया तो द बॉटम लाइन इज दैट यस पीपल नोज
रियली कैचिंग अप फास्ट रियली कैचिंग अप क्योंकि अब तो ये
टाइम कम है उनके पास
टाइम कम है यस
टाइम कम है तो नेक्स्ट इलेक्शन में हो सकता है वो
ज्यादा सीटें जीते
और हाँ और कुछ करें मगर इस दफा के इलेक्शन में उनके पास टाइम कम है
तो बस हम इनको ये कहना चाहते हैं मैक्सिम बर्नियर साहब लगे रहो मुन्ना भाई
नहीं मगर एक महीना ना 30 डेज थे ना 30 डेज में उन्होंने पूरी दुनिया को बताना है कि मैं भाई मेरी भी एक पार्टी है और मैं भी आ रहा हूँ लड़ने के लिए तो वो मगर उनका जो वो है ना
वोट बैंक
नहीं इनका जो कलर है वो उन्होंने मेरे ख्याल लिबरल से लिया क्या कलर रेड
थोड़ा सा
रेड है चलो सही है
वैसा है लेकिन लोगों को पता है जो जानते हैं उनको वो पता है कि वो ही हैज अ कंजर्वेटिव बैंड ऑफ माइंड
एग्जैक्टली
वो वैसा नहीं है वो थोड़ा वो नहीं है लिबरल्स की तरफ टिल्टेड नहीं है लेकिन कलर जो भी उनका हो ठीक है जी अच्छा जी कल जो हमारे जस्टिन ट्रूडो साहब थे वो यहाँ पे ब्रैम तो टन में थे और उन्होंने जो है मीटिंग की अपने ये जो 5 एमपीज हैं यहाँ के लिबरल ब्रैम्पटन के उनके साथ लेकिन वहां पे ये कर रहे थे अपना जिस हॉल के अंदर ब्रैम्पटन कन्वेंशन सेंटर बॉल रूम में तो वहां पे काफी सारे लोग भी आ गए लोगों का ख्याल है कि तकरीबन 400 के करीब लोग थे और मजे की बात यह है कि वहां पे एक्स प्राइम मिनिस्टर जॉन क्रिस्टियन भी आए क्रिटियन भी थे और जो थी हेजल मकैलियन भी थे तो अब लोगों ने इनको बड़ा आज एतराज किया उन्होंने कहा जी कि आप जो हैं आपने कैसे इतने लोगों को बुला लिया कोविड का जमाना है तो आज उन्होंने बड़ा डिफेंड किया है ट्रूडो साहब ने उन्होंने कहा जी जितने भी लोग थे सारों ने एसओपीज को फॉलो किया हुआ था मास्क लगाए हुए थे और जो है वो और वैसे भी आप जो हैं इन लोगों को ये जो इतने ओल्ड पॉलिटिशियंस हैं इनको आप कैसे रोक सकते हैं आने में हेजल मकैलियन जो है वो 100 ईयर्स की हैं उनको आप कैसे रोक सकते हैं और ये जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं जॉन क्रिटियन उनको आप कैसे रोकेंगे तो इस तरह से और फिर वहां पे बहुत सारे लोगों ने नारे लगाए इनके हक में ट्रूडो साहब के फॉर अ चेंज नारे लगाए और उन्होंने कहा कि आपकी जो वैक्सीनेशंस के लिए आपने जो काम किया है कि आप हर किसी को कह रहे हैं वैक्सीनेट करो अपने आप को और इसके अलावा जो आपने लोगों को ये जो इतनी वो दी हैं सहूलतें इस पेंडेमिक के बीच में तो बहुत लोगों ने इनके हक में कल नारे लगाए तो ट्रूडो साहब कल ब्रैम्पटन में आके बड़े खुश थे तो जो है ये आज उन्होंने डिफेंड बहरहाल ये सारी की
वैसे भी 905 तो लिबरल का एरिया है
बिल्कुल लिबरल का एरिया जी और यही इलाके जो है ये 905 ये ब्रैम्पटन ये सारे डिसाइड करते हैं कि भाई कौन जीतेगा कौन जीतेगा कनेडा सारे के अंदर
और ये मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जब मैंने नंबर्स देखे आज के यही नैनोस का जो था कि लिबरल्स जो है अगस्त 22 में 44% पे थे
जी 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 जी
अब जो है ये 47% पे है और कंजर्वेटिव जो है वो 34% पे जीटीए के 905 में अब 27% पे है और एनडीपी जो है स्टेज द सेम
या एग्जैक्टली तो ये अब पता चल जाएगा के अब क्या होएगा अच्छा जी ये आपको पता है ये हम आपको बताते जा रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा राइज करती जा रही है अच्छा अब जो इलेक्शन ट्रेल पे बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं दो बहुत अब ये मुद्दे हैं एक तो जी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होएगी कंट्री की और दूसरा जो है हाउसिंग अफोर्डेबिलिटीज के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है अब जो इन्फ्लेशन की बात हो रही है तो आज जगमीत सिंह जो थे वो एसेक्स में थे तो उन्होंने भी यही कहा है उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन बहुत ऊपर जाती जा रही है उसकी वजह से हाउसिंग जो प्राइसेस हैं वो बहुत ऊपर जाती जा रही हैं उसकी वजह से लोगों की जो हैं वो इतनी अफोर्डेबिलिटी रही नहीं कि वो घर खरीद सके, क्योंकि तनख्वाहें उस हिसाब से नहीं बढ़ रही हैं लोगों की। इसी तरह जो ट्रूडो साहब थे आज हैलीफैक्स में थे, तो उन्होंने कहा कि जी हम जो है हम तो इकोनॉमी के लिए बहुत सारा काम कर रहे थे, लेकिन पैंडेमिक के आने से वो सारा काम जो है जेपर्डाइज हो गया है, लेकिन फिर भी हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम इन चीजों को कंट्रोल करें, स्पेशली जो अनअफोर्डेबल हाउसिंग प्राइसेज हैं इनको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और ये जो अब हम चाइल्ड केयर मेजर्स जो हम ले रहे हैं ये काफी अब हेफ्टी होंगे जब हमारी अब नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी। अच्छा, एरन ओटूल साहब जो हैं वो क्यूबेक में थे, उन्होंने कहा जी ये जो ट्रूडो साहब सारे वादे कर रहे हैं ये एवे ही हैं, ये कोई ऐसे नहीं है, इनके पास तो कोई प्लान भी नहीं है, और ये कैसे ये चीजें जो हैं ये कम करेंगे। अच्छा, इधर इन्होंने एक बात और जो की है, उन्होंने कहा है, अच्छा ये नहीं बात कर रहे, इनसे पूछा भी गया है एरन ओटूल साहब से कि भाई आप बैलेंस करेंगे बजट में, कहते नहीं ये जो अब अगर हम आए तो तब तो नहीं हो सकेगा, हो सकता है 10 ईयर में बैलेंस होए बजट। अच्छा, जो कि ये बड़ा शोर मचाते थे कि बहुत ज्यादा स्पेंडिंग कर दी है ने। उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हम जो टेली कम्युनिकेशन है उसमें जो कंपटीशन है उसको बढ़ाएंगे, और हम ये जो है प्राइस फिक्स करेंगे ग्रोसरी चेन्स के साथ कि ये रोजमर्रा की चीजों की कीमतें इतनी ऊपर ऊपर क्यों जाती जा रही हैं, अब ये कैसे करेंगे मुझे नहीं समझ आ रही। क्योंकि देखे ना, अगर पहले अमरीका से फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है, अमरीका से $2 की चीज आ रही थी, अब $4 की आ रही है, तो आप कैसे ग्रोसरी स्टोर को कहेंगे कि तुमने 5 में नहीं बेचनी भाई, तुमने 2 में ही बेचनी है। बहरहाल जी ये उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हमारी स्पेंडिंग जो है वो होगी 42.5 बिलियन की इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स, जबकि जो लिबरल्स हैं वो इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स 78 बिलियन करेंगे स्पेंड। तो हम यानी जो बजट्स हैं उनको कंट्रोल करेंगे वैसे। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने कहा जी कि ये जो हाउसिंग का बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया है, तो इन्होंने कहा जी कि लिबरल्स जो हैं 1.4 मिलियन हाउसेस जो हैं 4 साल में बनाएंगे, हम 1 मिलियन हाउसेस 3 साल में ही बना लेंगे।
अच्छा,
हाँ, तो अफोर्डेबल जो है वो हाउसिंग लोगों को मिलेगी। और लेकिन ये दोनों जो पार्टीज हैं लिबरल भी और कंजर्वेटिव भी इस चीज पे तो जरूर ये सहमत हैं कि भाई जो ये जो फॉरेन प्रॉपर्टी बायर्स हैं इनके ऊपर थोड़े से कर्ब्स लगाने की जरूरत है। अच्छा जी, इसके अलावा जो हैं ये जो एरन ओटूल साहब हैं इनसे आज फिर से पूछा गया कि आपका क्या कहना है ये जो कार्बन प्राइसिंग है इसके ऊपर। उन्होंने आज एक दफा फिर से कहा कि जो ट्रूडो साहब का जो कार्बन जो प्राइसिंग है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और वो टैक्सेस जो वो कार्बन टैक्स लगा रहे हैं वो नहीं है, और हमारे जो है जो कंजर्वेटिव पार्टी का जो प्लान है वो बिल्कुल ठीक है, और हम क्या करेंगे कि हम जो लोगों के से जो कार्बन टैक्स लेंगे वो उनकी पर्सनल सेविंग्स में उसमें से अमाउंट कुछ भेजेंगे जो कि वो लोग जो हैं अपने लिए ग्रीन परचेजेस कर सकेंगे उससे। तो हमारा प्लान डेफिनेटली लिबरल जो है उससे बेटर है, ग्रीन जो सॉरी कार्बन टैक्स से जो रिलेटेड है वो। तो इस तरह की आज काफी यहां पे जो है बातें हुई हैं। अच्छा, अभी जो जिक्र कर रही थी अरफा बाजी के एनडीपी के दो जो हैं कैंडिडेट्स, एक हैं डैन ऑस्पर्न और दूसरे जो हैं ये हैं इन द राइडिंग ऑफ नोवा स्कोशिया कम्बरलैंड कॉलचेस्टर, और दूसरे हैं सिडनी कोल्स, कैंडिडेट थी ये टोरंटो सेंटर किससे, इन दोनों ने जो है टोरंटो स्ट्रीट से ये इन्हों दोनों ने आज रिजाइन किया। अच्छा जी, रिजाइन करने का मकसद क्या है कि इनके कुछ एंटी सेमेटिक जो कमेंट्स थे वो सामने आए थे। तो आज लोगों ने जगमीत सिंह साहब से इनके बारे में पूछा कि भाई आपका इनके बारे में क्या ख्याल है, उन्होंने कहा जी ये दोनों जो हैं इन्होंने रियलाइज किया है कि इन्होंने गलती की है, इन्होंने रिजाइन कर दिया है, एंटी सेमेटिसिज्म को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे अपनी पार्टी में, और इनकी जो है अब ट्रेनिंग चल रही है और उसके ऊपर ये लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, हुआ क्या था कि ये जो कोल्स थी ना ये इन्होंने तो बात की थी इसके ऊपर, ये जो हुआ था एक इसराइल के अगेंस्ट जो एक कदम उठाया गया था और उसके ऊपर इन्होंने बात की थी और होलोकॉस्ट के ऊपर बात की थी और इस तरह करके। यहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स ऑफ साइमन वाइजनथॉल सेंटर फॉर होलोकॉस्ट, तो उन्होंने कहा जी कि ये इन्होंने ये जो सारी तस्वीरें की हुई हैं तो व्हाट डज शी मीन बाय दैट, ये ज्यूज के अगेंस्ट है या क्या है,
सवालात उठा,
हाँ क्योंकि ये सवालात उठाती हैं, तो ये क्या कहने की यहां पे जो है वो कोशिश कर रही हैं। और अच्छा, इसी के साथ ये जो दूसरे थे डैन ऑस्पर्न जो थे इन्होंने भी एक ओपरा विनफ्री से एक क्वेश्चन किया हुआ था, इन्होंने अपनी एक पोस्ट में डाला हुआ था कि ये जो ऑस्विल्स में जो है ये जो तुम दिखाती हो जो बोलती हो क्या ये एक्चुअली हुआ था, ये हुआ था उस वक्त जो है, तो उसके ऊपर भी इन्होंने कहा क्या नाट्सीज ने ऐसे किया था, तो उसके ऊपर भी लोगों ने कहा कि ये मतलब शक कर रहे हैं कि ज्यूज के ऊपर इतना जुल्म हुआ और होलोकॉस्ट होया और उनको मारा गया। तो भड़क गई जरा जीव कम्युनिटी जो है उसके ऊपर. तो इन्होंने वैसे तो अपने ये हटा लिए हैं अपनी पोस्ट और इन्होंने अपोलोजाइज भी किया है, लेकिन क्वेश्चंस इनके ऊपर चूंकि उठ गए तो उन्होंने कहा जी ठीक है फिर हम रिजाइन करते हैं, हम फिर नहीं प्रोसीड करेंगे. और जगमीत सिंह ने काफी आज इसका जो है वो रिएक्शन शो किया है. तो अब ये देखेंगे और अब वीरेंद्र इतनी जल्दी तो कैसे रिप्लेस करेंगे अपने बंदों को, ये बहुत बड़ा असल में जो क्वेश्चन है. अच्छा जी, इलेक्शंस कैनेडा जो है वो कह रही है कि हमारे पास अब जो वॉल्यूम है स्पेशली जो मेल इन बैलेट्स जो हमारे पास आ रहे हैं उसका बहुत ज्यादा नंबर हमारे पास आ गया है, तो आप ये मत सोचना कि जल्दी से हम जो है आपको काउंट करके सारा कुछ दे देंगे. इसमें एक हफ्ता यानी 5 डेज उन्होंने कहा कि इसमें अब 5 more days यानी 20 सितंबर को इलेक्शन होगा, उसके बाद 5 more days लग सकते हैं हमको सारा काउंटिंग करने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं जी कि हमको इंटेग्रिटी चेक करना पड़ेगा बहुत ज्यादा. वो इन्वॉल्व है. अच्छा जी, इंटेग्रिटी चेक क्या है कि जैसे कोई एनवलप आया है तो हम देखना चाहते हैं कि वो उसने इलेक्टर ने साइन उसको किया है कि नहीं, उसने जो पर्सन जिसको के उसने वोट किया है क्या उसने एक ही दफा किया है कि कई बार किया है. तो कहते हैं इन सब चीजों के लिए हमको जो है काफी जो है टाइम लग सकता है. अच्छा इसके साथ साथ जनाब एक अफसोस की खबर है, नूनावट से आई है. वहां पर एक जो तैयारा था हेलीकॉप्टर जो था वो कर रहा था लैंडिंग कर रहा था, तो उस लैंडिंग में वो लैंडिंग करते करते रोल ओवर कर गया वो जो है हेलीकॉप्टर, तो उसमें एक आदमी जो है उसकी डेथ हो गई. और यहां पे एक माइंस हैं उनके पास ये वाक्या हुआ, तो वहां पे जो एजनीको ईगल माइंस हैं ये, और ये पास हैं इसके होप बे गोल्ड माइन के पास है ये इलाका, तो वहां पे ये है. तो वहां पे जो ये एम्प्लॉय था उनका और वहां पे जो कंपनी है उसने कहा है कि हम इसको सारी सपोर्ट देंगे बाकी एम्प्लॉयज को भी और इसको भी, और RCMP अब इसमें इन्वॉल्व हो गया. अच्छा इसमें हैरत की बात यह है कि अभी तक तो ऐसी कोई बात आई नहीं है कि कोई दहशतगर्दी का कोई ये वाकया है या क्या है, लेकिन RCMP इसके अंदर जो इन्वॉल्व हुई है तो उसने काफी मीडिया के अंदर क्वेश्चन उठाए हैं कि ये एक हेलीकॉप्टर था, ये लैंड कर रहा था, रोल ओवर हुआ उस इलाके के अंदर और आदमी की डेथ हो गई, तो ये तो नॉर्मल पुलिस का वो था केस, वो उसको ये देख सकते थे. आरसीएमपी के अंदर जो है क्यों इन्वॉल्व हुई है, ठीक है वो सेफ्टी ट्रांसपोर्टेशन बोर्ड ऑफ कनाडा जो है वो तो जाहिर है वो देखता है सारे तैयारों के साथ कोई हादसा होता है, आरसीएमपी की जो इन्वॉल्वमेंट है ना उसने कुछ आईब्रोज जो है रेज किए हैं इस मामले में. तो ये अब देखेंगे कि अब ये क्या टेररिज्म इसमें इन्वॉल्व थी, किसी ने इसको शूट डाउन किया है, क्या हुआ है. तो ये अब जैसे ही हमारे पास अपडेट्स आएंगे तो हम आपको बताएंगे. अच्छा जनाब, चाइना ने आज कहा है कि उसके 91% स्टूडेंट्स माजिद भाई एज 12 से 17 के बीच में वैक्सीनेटेड है. कैन यू इमेजिन चाइना जैसे बड़े मुल्क में 91% स्टूडेंट्स एज 12 to 17, दे आर
सरप्राइज्ड दैट 9% कैसे रह गए.
वो भी 9% कैसे रह गए, एग्जैक्टली दैट सरप्राइजिंग. तो वो कहते हैं जी वो वैक्सीनेटेड हैं, ये उनके स्टेट टेलीविजन ने आज कहा है. उनको वो कह रहे हैं कि हाँ हमें थोड़ा सा कंसर्न आ रहा है, हमारा जो साउथ ईस्टर्न जो प्रोविंस है फुजियन उसके अंदर कोई 142 नए केसेस जो है वो सामने आए हैं, लेकिन हम उनको भी टैकल कर रहे हैं. और वो कह रहे हैं कि हमने अपनी ही दो जो हमारी जो वैक्सीन हैं साइनोफार्म और साइनोवैक की वही हमने यूज की हैं और उसी से ये सारा हमारे मुल्क में कंट्रोल है. और वो कह रहे हैं कि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अंडर 12 भी हैं उनके साथ भी हम उनको भी हम देख रहे हैं कि कैसे किया जा सकता है वैक्सीनेशन. तो इट्स अ ह्यूज न्यूज, आज काफी ये मीडिया हाउसेज में फ्लैश हुई हुई थी. इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट जो है. अमरीका की जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA जिसको हम लोग बोलते हैं, वो अब यानी उन्होंने धीमे धीमे मिजाज में बहुत ही आज उसके अंदर लो टोन्स के अंदर कहा है कि वैसे तो अगर फाइजर की थर्ड बूस्टर शॉट दी जाए तो उससे इम्यून रिस्पांस बहुत ऊपर चला जाता है. अच्छा जी, बस इतनी ही बात की है. तो जर्नलिस्टों ने उनसे पूछा कि अच्छा तो फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं, ली जाए या ना ली जाए, तो वो कहते हैं हम अभी सोच रहे हैं इसके ऊपर. यानी ये नहीं कहा कि लेना जरूरी है, बिल्कुल हर हाल में लेना ही पड़ेगा बूस्टर शॉट जो है, ये नहीं कहा कि हर हाल में, कहते हैं हाँ ले तो इम्यून सिस्टम. भाई साहब आप क्या कहना चाहते हो, ले के ना ले,
हाफ एंड हाफ.
हाँ हाँ, अब क्या फिर, अब देखो ना लोगों को तो आपने लर्च में छोड़ दिया ना. यू हैव लेफ्ट पीपल, ले के ना ले फिर बूस्टर शॉट है. अच्छा इम्यून सिस्टम हो जाता है, अच्छा जी फिर हम ले लेते हैं, हाँ ले सकते हैं, मतलब क्या मतलब है भैया आपका, आप FDA
डेफिनेट आंसर.
हाँ आंसर दो ना भाई कि हाँ भाई जरूर हर हाल में लेना ही पड़ेगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं है. नहीं ले भी सकते हैं, अच्छा जी ले भी सकते हैं का क्या मतलब है,
योर चॉइस.
अच्छा जी ऐसे है. अच्छा जी, जो अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं अमीर खान मुत्तकी, अमीर खान मुत्तकी ने आज जो ये सारा वेस्टर्न वर्ल्ड और सारे ये जो हैं यूएसए वाले खासतौर पर इनके ऊपर बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स और ये और वो उसके जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि ये इंटरिम गवर्नमेंट है और ये इसको आए हुए भी एक हफ्ता मुश्किल से हुआ है, इस इंटरिम गवर्नमेंट को आप जरा अपना काम करने दें, हम जो हमारे असूल हैं जो हमारे जो हैं जो के कबूल होंगे वैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी, उनके मुताबिक हम ह्यूमन राइट्स भी देंगे और हम किसी को अपनी सॉयल टेररिज्म के लिए यूज भी नहीं करने देंगे, हम लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, लेकिन ये जो आपका खास तौर पे यूएसए का जो क्रिटिसिज्म है अगेंस्ट अफगानिस्तान, ये बिल्कुल अनफेयर है और नॉट जस्ट है, इट इज नॉट जस्ट, अभी हमको जरा काम आप करने दें जिस वक्त आप करेंगे। और वो कहते हैं जी अफगान, वो कह रही है यूएस की गवर्नमेंट कह रही है कि ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, वो कहते हैं जी बिल्कुल इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, बेशुमार उसमें सिर्फ तालिबान के लोग नहीं है, बेशुमार अदर ग्रुप्स भी जो हैं वो भी इस गवर्नमेंट के अंदर शामिल हैं। तो ये जो आपके हैं ये सारे एलिगेशन हैं, तो हम इसको जो है एलिगेशन को नहीं मानते हैं। अच्छा जी, आज मुझे बड़ी हैरत हुई कि टाइम मैगजीन वालों ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों की जो लिस्ट है वो छापी है और उसके अंदर किसी पाकिस्तानी नहीं है। मौजूद भाई, व्हाट इज दिस? हैं जी,
वी डोंट रियली केयर,
वी डोंट रियली केयर। अच्छा ठीक है, चलो हल्ली वली फिर है, हल्ली वली। अच्छा जी, इन्होंने कहा है जी कि मोस्ट जो इन्फ्लुएंशियल हैं वो एक दो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, और सीरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं आधार पुणे वाला, ये सम ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं। अच्छा जी, इनके बारे में, मोदी जी के बारे में तो अच्छा, इसके अलावा उन्होंने बाइडन का भी नाम लिया है, कमला हैरिस का, शी का, और ये जो हैरी और मेगन है ड्यूक एंड डचेस ऑफ ससेक्स, और ट्रंप साहब, और हालांकि इसके अंदर उन्होंने मुल्ला अब्दुल गनी बरदर तक का नाम लिया है, तालिबान के जो है को फाउंडर। अच्छा जी, तो इसके अंदर वो, अच्छा टाइम्स का कहना है कि जी 74 ईयर्स हो गए इंडिया की इंडिपेंडेंस को, और जो तीन सबसे बड़ी पर्सनालिटीज इंडिया में उभर के आई थी वो था एक तो जवाहरलाल नेहरू साहब, एक इंदिरा गांधी, और उसके बाद मोदी जी। ये सबसे ज्यादा, तीसरी सबसे बड़ी है। अच्छा, मोदी जी जो है इस वक्त उनकी उम्र जो है माशाल्लाह 69 ईयर्स के हैं, तो वो कहते हैं जी कि ये जो कंट्री की पॉलिटिक्स है उसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और जो सीएनएन के एक जर्नलिस्ट थे फरीद जकरिया, उन्होंने कहा था कि ये एक सेक्युलर कंट्री था इंडिया, उससे ये हिंदुत्व की तरफ, हिंदू नेशनलिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं। तो वो कहते हैं जी कि इन्होंने, ये जो फरीद जकरिया ने कहा था कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी है इसके ऊपर जो है ये कर्ब्स टाइट करते जा रहे हैं, इंटिमिडेट और इम्प्रिजन कर रहे हैं जर्नलिस्टों को और इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो बहुत, और इनके आगे कोई बोलता नहीं है। तो उसी यानी लाइन में, उसी उसमें टाइम ने कहा कि ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गया इंडिया के अंदर, और ये दुनिया के अंदर भी जो है मोदी जी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है बढ़ने लगा है। अच्छा, जो दीदी है हमारी ममता बनर्जी, 66 इयर्स इनकी एज है, उसके बारे में ये कहा है कि ये टीएमसी का फेस नहीं है, यानी कि ये तृणमूल कांग्रेस का फेस नहीं है, ये खुद शी इज अ पार्टी इन हरसेल्फ, और इसने जिस तरह से ये इन सारे जो मामलात ये इंडिया में चल रहे हैं उसमें ये उभर के सामने आई है और डरती नहीं है सेंटर की गवर्नमेंट से, और जिस तरह के ये बयान देती है, तो शी इज रियली अ टाइग्रेस
आरएन वुमन।
हाँ, और ये बड़ा इन्फ्लुएंस जो है वो करती है लोगों को, और जो है वो, अच्छा पुणे वाला के बारे में कहा ये सिर्फ 40 ईयर्स के हैं, वेरी यंग सीईओ, लेकिन वो कहते हैं जी कि चूंकि पेंडेमिक अभी खत्म नहीं हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन सेंटर जो है वो ये चलाते हैं, तो हमेशा अब और भी कुछ अरसे तक इनके इंस्टीट्यूट की जरूरत रहेगी, क्योंकि इनकी वैक्सीन की जरूरत दुनिया में रहेगी, तो इसलिए जो है ये भी बड़ा जो है इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करते हैं। तो जनाब ये आज बड़ी यानी खबरें दी हैं टैम ने, है जी। अच्छा जी, बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया है हमारे जो है एक ये जो एक इंटरव्यू सामने, मतलब इंटरव्यू क्या है, ये एक आप समझ सकते हैं फीचर आया, फीचर सामने आया है। तो ये बीबीसी का ये जो फीचर आया सामने, इसमें जाहिर है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, जिसके के अंदर जो है मुल्ला बरादार जो है उनका भी इसके अंदर जो है वो इंटरव्यू है, और इसके इसमें कुछ मतलब है, छोटे छोटे एक्सर्प्ट्स वगैरह उन्होंने छापे हुए हैं कुछ, क्योंकि तालिबान के कुछ लोगों से बात की है, और ये बीच की खबर है, ये इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है बीबीसी की। बीबीसी की इस खबर के मुताबिक, इस बीबीसी के मुताबिक जो ये जो गवर्नमेंट बनी है उसके अंदर फूट पड़ गई है, तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसकी फूट पड़ गई है। वो कहते हैं जी प्रेसिडेंशियल पैलेस में जो लोग मौजूद थे उन उनमें से कुछ सीनियर जो तालिबान के लीडर्स हैं उनसे जो हमारी बात हुई है, तो मुल्ला बरदार जो हैं ये जो हक्कानी नेटवर्क के लोगों को जैसे खलीलुर्रहमान और खलीलुर्रहमान हक्कानी वगैरह और सिराजुर्रहमान के हक्कानी, इनको जो इधर पार्टी के अंदर जगह दी गई है उससे बरदार साहब खुश नहीं है। वो कहते हैं ये हक्कानी जो ग्रुप है उसके बंदे क्यों आए हैं। अब इनको समझना चाहिए कि ये जो है बरदार साहब, वो कहते हैं जी सारा क्रेडिट मुझे दो, बीबीसी की ये रिपोर्ट कहती है, वो कहते हैं जी सारा क्रेडिट मुझे दो, मैंने ये डिप्लोमेटिक सारी चीजें चलाई, दोहा के अंदर मैंने टॉक्स को इनिशिएट किया, यूएसए के साथ पीस टॉक्स में मैं बैठा था, तो क्रेडिट मुझे दे जाना चाहिए था और आपको मुझसे पूछना चाहिए था गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी। आपने ये हक्कानी ग्रुप को जो है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे दी है। अब बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि इनको पता नहीं है कि हक्कानीज जो है वो तालिबान के बड़े क्लोज है, वो तो बड़े क्लोज है, वो हर हाल में इसमें होंगे। वो कहते हैं जी कि ये इन्वॉल्व हैं 2017 काबुल की बॉम्बिंग के अंदर जिसमें 150 लोग मर गए थे, और ये जो इनके हैं ये खलीलुर्रहमान हक्कानी और सिराजुर्रहमान हक्कानी वगैरह, ये जो हैं इनको तो ये तो उसके ऊपर अमेरिका की टेररिस्ट में है, तो ये कैसे शामिल है। तो वो कहते हैं ये ज्यादा देर तक ये इनकी इंटरिम अकॉर्डिंग टू बीबीसी कि ये इनकी इंटरिम गवर्नमेंट चलेगी नहीं ज्यादा, तो काफी इनके बीच में जो है इन फाइटिंग शुरू हो गई है और लड़ाई, तो इनमें काफी उन्होंने इंटरव्यूज कुछ लिए हुए हैं सीनियर तालिबान जो है वो फिगर्स के, जिनके उन्होंने नाम नहीं लिखे लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमें अंदर की जो है वो खबर मिली है।
और ये प्रैक्टिकल बात है क्योंकि ये वहां डिफरेंट ग्रुप्स के लीडर्स आके एक जगह पे
इकट्ठे किए हैं उन्होंने। बिल्कुल। अच्छा जी, यूनाइटेड नेशंस की जो हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स हैं मिशेल बैशले, उन्होंने जो है आज वो बात कर रही थी 48 सेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल से, और ह्यूमन राइट्स की जो सिचुएशन दुनिया में है उस पर बात कर रही थी, चाइना पे उन्होंने बात की और मुल्कों के ऊपर बात की, तो उस पर बात करते करते वो इंडिया के ऊपर भी आ गई। उन्होंने कहा हिंदुस्तान से जो हमें खबरें मिल रही हैं वहां पर ये हमें बताया गया है कि कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन ब्लॉकआउट्स हैं वहां पर जम्मू और कश्मीर में, वहां पर जो है लोगों पर सख्ती की जाती है, लोगों को डिटेंशन में डाला जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जर्नलिस्ट जो है उनके ऊपर बड़ा प्रेशर है, उनको बड़ा तंग किया जाता है, तो ये सारी और स्पेशली इनको लोगों को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है यूएपीए जिसको कहा जाता है ड्रेकोनियन लॉ है इंडिया में खुद भी लोग कहते हैं, उसके अंडर जो है इन लोगों को ट्राई किया जाता है जिसमें कि उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनके ट्रायल्स नहीं होते हैं, तो ये बड़ा सोर्स ऑफ कंसर्न है हमारा इंडिया के लिए। अच्छा, वहां पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो सेक्रेटरी जो थी रीनत संधू, उन्होंने कहा है जी कि मोहतरमा आपको हिंदुस्तान के बारे में जो खबर मिली है वो बिल्कुल गलत है, आपके पास जम्मू और कश्मीर के ऊपर ये जो आपके कॉमेंट्स हैं ये अनवॉरेंटेड हैं, और बड़ा उसने हमें डिसअपॉइंट किया क्योंकि आपके पास ग्राउंड रियलिटी की सच्चाई ही नहीं है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही बेसिक ह्यूमन राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, और पार्लियामेंट हमारी और जुडिशरी जो है वो आजाद हैं, एंड वी हैव अ वेरी वाइब्रेंट मीडिया जो कि हमको ये गलत काम नहीं करने देंगे, इसके अलावा हमारी जो सिविल सोसाइटी है वो ह्यूमन राइट्स फुली एंजॉय करती है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपकी ये जो सारी जो रेटरिक है ये बिल्कुल हमको डिसअपॉइंट करती है, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो आज से आज फिर उन्होंने जी हिंदुस्तान ने रद्द कर दिया है यूनाइटेड नेशंस की इस उसको। अच्छा जनाब, मोदी जी जो हैं वो अब हमने आपको बता रहे हैं एक दो दिन से हम के एससीओ की मीटिंग होने वाली है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो दुशंबे में होने वाली है, तो मोदी जी जो हैं वहां पे फ्राइडे को दुशंबे में इस सेशन को जो है वो करने वाले हैं, और जाहिर है कि इसके अंदर वो सारी जो अफगानिस्तान की सिचुएशन और उनकी जो है वो परेशानियां जो कंसर्न्स हैं इंडिया के वो उसके ऊपर बात करेंगे। मीन वाइल एट द सेम टाइम जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है इंडिया के मोदी जी के साथ वो भी दूसरी जो की मीटिंग्स हैं उनमें हिस्सा लेंगे जयशंकर साहब, और ये मीटिंग्स जो है ये चेयर की जा रही हैं बाय ताजिक प्रेसिडेंट इमोमाली रहमोन, और इसके अंदर दूसरे भी एससीओ के मेंबर्स होंगे और एंटी टेररिज्म और इस तरह की चीजों के ऊपर बात की जाएगी, और अफगानिस्तान और उसके इम्प्लीकेशंस के हैं रीजन के ऊपर तो वो जो है उस पर बात की जाएगी। अच्छा, अभी जो आरफा बाजी बात कर रही थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने सीएनएन को एक इंटरव्यू दिया है, तो उन्होंने आपको कुछ बातें बताई और कुछ बातें अब जो है उस इंटरव्यू से मैं आपको बताती हूं। ये बात कर रहे थे बैकी एंडरसन से, तो बेकी एंडरसन को इन्होंने जो इंटरव्यू दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि जी आप ये जो नई तालिबान की गवर्नमेंट है इसको आप क्यों रिकग्नाइज कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि अगर आप इस नई तालिबान की गवर्नमेंट को आपको रिकग्नाइज ही नहीं, सिर्फ आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, इंसेंटिव देने पड़ेंगे ताकि वो वापस टेररिज्म की तरफ ना जाएं।
सही।
इनके इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं बहुत बुरी हैं, इनके पास जो है कोई भी हुकूमत चलाने के लिए वो नहीं है। ना सिर्फ ये कि आपको यहां पे 40 इयर्स के बाद इस मुल्क में जो पीस आया है उसको आप सपोर्ट करें, बल्कि इनको ह्यूमैनिटेरियन एड दें ताकि ये अपने जो है काम चला सकें। और उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है उसने तालिबान ने कि हम जनरल एमनेस्टी दे रहे हैं अपने सारे दुश्मनों को। तो अगर उन्होंने बदला लेना होता और वो करना होता तो वो उसी पहले दिन से ही वो शुरू कर देते, जो कि ये नहीं कर रहे हैं। तो ये आपकी एक फैलसी है कि आप समझते हैं कि ये तालिबान को आप जोर जबरदस्ती से अपनी बातें मनवा सकेंगे। तो उसने कहा तुम्हारा इन्फ्लुएंस नहीं है अफगानिस्तान के ऊपर। उसने कहा जी नहीं, आप हिस्ट्री पढ़े अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी बाहर के जो रूलर्स हैं या बाहर के लोग हैं उनकी जोर जबरदस्ती अफगानिस्तान ने कभी भी नहीं मानी है। तो ये आप इमेजिन कर रहे हैं चीजें कि पाकिस्तान इन जैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, बात कर सकता है इनके साथ। और ये बात आपको भी समझनी चाहिए, और आपने अगर उनका ये बात ना समझी तो सबसे बड़ा दुनिया का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहां पर शुरू हो जाएगा और उनकी सॉयल से जो है टेररिज्म फिर से शुरू हो जाएगी। तो आप उनकी जरूरतें जो हैं उसको करें। अच्छा, वो कहते हैं जी कि आपने जो है बड़ा साथ दिया अमेरिका का और फिर आप पीछे हट गए। उसने कहा जी जी बिल्कुल, इसलिए क्योंकि जिस वक्त पोस्ट 9/11, पहले तो 9/11 से पहले क्या हुआ कि अमेरिका ने हमको कहा कि जी तुम हेल्प करो हमारी, ठीक है जी, कि हमने इधर से सोवियत यूनियन को निकालना है। इन्होंने हमें कहा जी तुम मुजाहिदीन तैयार करो, हमने जी मुजाहिदीन तैयार किए, हमने इनको निकाला। फिर क्या हुआ जी, 9/11 हो गया। 9/11 के बाद जी अमेरिका ने कहा अब तो हम यहां पर घुस रहे हैं। अब जब इन्होंने घुस के मारना शुरू किया इनको अफगानियों को, तो इमरान खान साहब कहते हैं 50 मिलिटेंट ग्रुप्स जमा हो गए। और उस वक्त वो सब लोग जिनको कि हमने ट्रेन किया था और हमने कहा था ये सोवियत्स को निकालो, इस्लाम के और मजहब के नाम पे वो सारे हमारे खिलाफ हो गए, क्योंकि हमने उनको कहा था कि ये काफर है, इनको अपने मुल्क से निकालो। तो उन्होंने कहा जी कि अब तो अमरीका आ गया तो अमरीका भी काफर है, तो अब आप अमरीका का साथ क्यों दे रहे हैं। तो उसमें फिर पाकिस्तान को बेइंतहा सफर करना पड़ा। और उन्होंने कहा, इमरान खान कहते हैं जी कि बुश साहब ने तो कहा था हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे, हम तो कभी पाकिस्तान को अबंडन नहीं करेंगे। इमरान खान कहते हैं, आप स्पीच सुने जरा उनकी, बुश साहब की, जॉर्ज बुश की। तो उसने कहा जी हम तो अबंडन नहीं करेंगे, लेकिन जिस वक्त ये सारा शुरू हुआ तो आपने छोड़ दिया। तो उसने बेकी ने पूछा कि उसकी वजह क्या है। उसने कहा जी उसकी वजह यह है कि ये सारे पश्तून है, पश्तून पश्तून को नहीं मारता है। ये सारे एज अ रिजल्ट हमारे अगेंस्ट हो गए, फिर हमारे अगेंस्ट हो गए और हमारे लिए जो यहां पे बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ गई। उसके अलावा फिर आपने क्या शुरू किया, कहते हैं फिर आपने कहा हमें अच्छा, हमने जब बात करनी शुरू की आपने ड्रोन अटैक्स शुरू कर दिए। 480 ड्रोन अटैक्स आपने पाकिस्तान के ऊपर किए, ये कह के कि हम टेररिस्टों को मार रहे हैं, ये इनको, ये जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं इनको मार रहे हैं, लेकिन उसमें कोलेटरल डैमेज होता था, उसमें सिविलियंस मरते थे, जब सिविलियंस मरते थे तो सिविलियंस का रिएक्शन आता था, रिएक्शन आता था तो वो पाकिस्तान के खिलाफ होते थे। तो वो कहते हैं आपको ये बातें समझ नहीं आई। अच्छा, उसके बाद कहते हैं जी कि आपने, वो कहते हैं लेकिन आप जो हैं आपने इन लोगों को जो है वो नहीं कर रहे, फाइनेंस नहीं कर रहे, और हमने तो सुना है कि आपकी ISI और आपके तो कुछ लोग मिलिट्री के ऐसे हैं जो कि तालिबान को बड़ा पसंद करते हैं और इन स्प्लिंटर ग्रुप्स को बड़ा पसंद करते हैं और आप इनको फाइनेंस कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा जी भाई साहब 220 मिलियन का कंट्री है ये, 220 मिलियन का कंट्री, और आपको पता है पाकिस्तान का बजट क्या है। पाकिस्तान का बजट टोटल $50 बिलियन है। तो हम तो ये 50 बिलियन अपनी जरूरतों के लिए पूरा नहीं कर सकते, तो हमारे पास इतने पैसे कहां से आए या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास कहां से आए कि वो जो है टेररिस्टों को फाइनेंस करें। टेररिस्टों को फाइनेंस वो कर सकते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है। हमारे पास तो अपने मुल्क की मशीनरी चलाने के लिए पैसा नहीं है, और इंटेलिजेंस को तो इनके साथ करना ही पड़ा, क्योंकि इंटेलिजेंस जो एजेंसी होती है उसका काम होता है लोगों के बीच में राबते बनाना, अब मुल्क के अंदर शांति लाना। उस शांति के लिए अगर उनको कुछ लोगों से बात करनी पड़ेगी वो जरूर करेंगे, राइट। तो उसमें ये नहीं है कि वो फाइनेंस कर रहे हैं इनको, फाइनेंस के लिए तुम्हारे पास एक रुपया भी नहीं है, हमारी तो खुद की इकोनॉमी कितनी सफर कर रही है, तो तुम कैसे हमारी मिलिट्री और इंटेलिजेंस के खिलाफ जो है ऐसे बोल सकती हो। तो ये आज उनका बहुत ही जबरदस्त इंटरव्यू था, बड़ा हार्ड हिटिंग था, और जैसे उन्होंने वो तो आरफाबाजी ने बता ही दिया कि उसने कहा कि अभी तक आपको क्या लगता है कि आप तो बड़े क्लोज एलाए हैं अमरीका के, तो अमरीका बाइडन साहब ने आपसे क्यों नहीं बात की। उन्होंने कहा हाँ ही इज अ वेरी बिजी मैन, तो मे बी ही इज बेटर थिंग्स टू डू। तो यानी उनके कहने का मतलब यह है कि हम कोई उसके फोन का इंतजार भी नहीं कर रहे हैं।
हाँ, पहले इससे पहले भी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आई एम नॉट वेटिंग फॉर हिज फोन।
हाँ हाँ, फोन कॉल तो ही इज अ वेरी बिजी मैन उसने कह दिया। अच्छा जनाब, एक इंटरव्यू जो है द इंडिपेंडेंट को शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी दिया है, और शाह महमूद कुरैशी साहब का भी बहुत अच्छा इंटरव्यू था, इमरान खान जितना अच्छा तो नहीं था लेकिन ये भी आज एक अच्छा इंटरव्यू था। यहां पे उनको कहा गया है कि भई आप तालिबान के साथ बातें जो कर रहे हैं बस वही मोस्ट ऑफ द बातें जो कि इमरान खान साहब ने की वही उन्होंने कहा। उन्होंने कहा हाँ जी हम बात कर रहे हैं, बात करना जरूरी है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, उस क्राइसिस को खत्म करना जरूरी है, वहां पर उन्होंने पार्डन अनाउंस किया है, आप भी थोड़ा सा यू नो हैव अ हार्ट और उनकी बात आप सुन लें, उनको थोड़ी एड दे दें। उसके बाद उसने एक क्वेश्चन किया लड़की ने, उसने कहा कि आप जो हैं टीटीपी से आप बड़े खायफ हैं, हालांकि आपके बारे में तो कहा जाता है कि आपने तो तालिबान को क्रिएट किया है, तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से आपके। उन्होंने कहा जी कुरैशी साहब ने कि हमने ये हजारों ही दफा पहले भी बातें की हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमारे लोगों को मारती है, हमारे फौजियों को मारती है, हमारे बच्चों को मारती है, हमारे इंटरेस्ट के ऊपर, हमारे प्रेजिडेंट्स के ऊपर हमले करती है, हमारे इंटरेस्ट को खराब करती है। तो लेकिन फिर भी इमरान खान की गवर्नमेंट टीटीपी को कहती है कि अगर तुम हमसे माफी मांग लो और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलो तो फिर जो है हम आपके साथ बात कर सकते हैं और आपको पार्डन भी कर सकते हैं। तो अब वो कहते हैं जी इससे बड़ी बात हम अब क्या कर सकते हैं टीटीपी को, इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। तो ये भी बड़ा अच्छा। अच्छा जनाब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो काफी भड़की हुई है पीटीआई की गवर्नमेंट से, क्योंकि जो आजम सवाती साहब और फवाद चौधरी साहब ने कुछ एलिगेशंस उनके ऊपर लगा दिए हैं। आजम सवाती साहब ने तो कहा था, जो हमने उनको बयान आपको कुछ दिन पहले सुनाया भी था, कि शेम ऑन ईसीपी क्योंकि ये जो है ये कुछ सेक्टर से पैसे भी लेती है और ये जो है बड़ी ब्राइब्स भी लेती है और जो है ये किसी के पेरोल पे भी है। तो इसी तरह की फवाद चौधरी साहब ने भी बात की थी कि उन्होंने कहा था कि जी ये जो है इनको पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, इनको बिल्कुल जो है वो ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, नॉन पॉलिटिकल अदारा होना चाहिए, और इस तरह की जो है ये बातें की थी। तो उसके ऊपर आज मीटिंग बुलाई गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और उन्होंने पेमरा को कहा है कि जी पूरी रिकॉर्ड करके ये सारी चीजें हमें दो और हम इनके खिलाफ जो है एक्शन लेंगे मिनिस्टर्स के अगेंस्ट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो आज इसको चेयर कर रहे थे, और इसके अंदर काफी सारे लोग निसार अहमद दुरानी और शाह मोहम्मद जतोई और भी बहुत सारे सीनियर जो ऑफिशियल्स हैं इलेक्शन कमीशन के वो इसके अंदर शामिल थे। आईएसपीआर की आज एक रिपोर्ट आई है कि फिर से आज जो है कुछ टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, दिस टाइम इन साउथ वजीरिस्तान, और इसके अंदर 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो है मारे गए हैं। और वो कहते हैं जी कि हमें पता चला था कि इस इलाके में कुछ जो असमा मंजा का इलाका है साउथ वजीरिस्तान में उसमें कुछ टेररिस्ट हैं, तो हमने वहां पे उनको जब खत्म करने की कोशिश की तो गोली चली जिसमें हमारे 7 बंदे जो हैं वो शहीद हो गए हैं और हमने 5 जो हैं टेररिस्ट उनको मार गिराया है। तो ये काफी बढ़ते जा रहे हैं ये केसेस जो हैं। अभी कुछ दिन पहले भी जो है आपको पता ही है 4 एफसी के जो है ऑफिशियल्स इन्होंने मार दिए थे, और इसके अलावा 2 पाकिस्तानी सोल्जर्स उससे पहले मार दिए थे। तो अब पता नहीं पाकिस्तानी अखबारों में एक सेंटेंस आता है, करार वाकई सजा दे। अब करार वाकई सजा क्या है मुझे आज तक समझ नहीं है, क्योंकि रोज ही वो बंदे मार रहे हैं आपके, तो पता नहीं करार वाकई सजा क्या है। अफगानिस्तान की जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसने आज पाकिस्तान जो सिविल एविएशन है उसको कहा है कि हमारे 2 तैयारे जो हैं, एक तो एरियाना अफगानिस्तान और एक जो है कैम एयर, इनके कमर्शियल ऑपरेशंस आप स्टार्ट करने दें पाकिस्तान के साथ। उन्होंने कहा कि हाँ हमें पता है कि जब अमेरिकन सोल्जर्स यहां से गए थे तो जो हमारा मेन इंटरनेशनल काबुल का एयरपोर्ट था काफी बुरी तरह से डैमेज था, लेकिन बस थैंक्स टू कतार्स टेक्निकल असिस्टेंस उन्होंने काफी एयरपोर्ट को अब ऑपरेशनल बना दिया है, और हमने नोटिस जो है वो नॉटम को भेज दिया, वो है ना वो नॉटम वो जो अदारा होता है एयरमैन का, तो उन्होंने कहते हैं हमने उनको भेज दिया और 6 सितंबर को तो अब हमें आप कमर्शियल तैयारी चलाए जाए। अच्छा जी, अब जो जर्मन एयरलाइन है लुफ्थेंजा, लुफ्तुन्निसा जो है उसका आज बहुत बड़ा डेलीगेशन पाकिस्तान में आया हुआ था 13 साल के बाद। वो कहते हैं जी अब हम फिर से आपके साथ जो है यहां से कमर्शियल फ्लाइट्स चलाना चाहते हैं और कार्गो फ्लाइट्स भी चलाना चाहते हैं। ये 16 मेंबर डेलीगेशन था जिसको के हेड कर रहे थे जर्मन एमिराती ज्वाइंट काउंसिल फॉर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के सीईओ जो हैं ओलिवर ओहम्स, और उन्होंने कहा है कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अब अपॉर्चुनिटीज और हम चाहते हैं हम आपके साथ जो है कमर्शियल अब फिर से शुरू करें। जी जनाब तैयार है, अब पाकिस्तान में बड़े लोग आ रहे हैं, तब्दीली आ रही है जी,
और उसके बावजूद भी फिर
पाकिस्तान को जी डाउन हुए तो पाकिस्तान ये तो
मोस्ट इन्फ्लुएंशियल
बंदा नहीं किया। देखिए जरा मतलब नादानी आप देखें कि दुनिया के अंदर इस वक्त क्राइसिस क्या चल रहा है, सारी दुनिया सिर्फ अफगानिस्तान की कोविड तक को भूले हुए हैं लोग हैं, और इमरान खान का नाम नहीं है उसमें, मोस्ट हंड्रेड इन्फ्लुएंशियल में तो सबसे ऊपर इमरान खान का नाम होना चाहिए था हैं जी। तो बहरहाल जी यानी नादान है ये लोग, समझ जाएंगे कोई बात नहीं। अच्छा जी वही जो हम प्रोग्राम आपको बताते हैं अरबाज खान का पिंच जो एक प्रोग्राम है जिसके अंदर वो ट्रोल्स पढ़ते हैं डिफरेंट बॉलीवुड के स्टार्स के साथ, तो इस दफा उनके प्रोग्राम पे अनिल कपूर आए थे, तो वहां पे एक आदमी ने ट्रोल किया हुआ था अनिल कपूर को, उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि तुमने अपने घर में एक प्लास्टिक सर्जन रखा हुआ है और तुम स्नेक का खून पीते हो तब तुम इतने जो है जवान हो। तो वो अनिल कपूर पहले तो भड़क गए, कहते हैं अरबाज ये तुमने कहा ऐसे वो ट्रोल्स, ये तुमने तो नहीं कहा लोगों को लिखने को, उसने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं कहा, फिर वो हंसना शुरू हो गए, तो उन्होंने कहा नहीं आई हैड अ वेरी आई मस्ट यू नो से दैट आई हैड अ वेरी प्रिविलेज्ड लाइफ, तो प्रिविलेज्ड लाइफ की वजह से फाइनेंशियली भी एंड अदरवाइज, तो इसलिए जो है मैं ऐसे फिट दिखता हूं। एक और जो खबर है जी हमारे पास आई है वो ये है कि अफगानिस्तान की जो विमेन फुटबॉल टीम है जी वो अब पहुंच गई है पाकिस्तान, इसकी इंफॉर्मेशन जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने दी है, क्योंकि आपको पता ही है ये तोरखम के बॉर्डर से आई है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि तालिबान ने कहा है कि कोई विमेन स्पोर्ट्स नहीं होगी, तो ये अब पाकिस्तान में आई है, इनको वीजे दिए गए हैं, तो इस तरह से है। तीन माउंटेनियर्स हैं जी जिसके के अंदर दो चेक रिपब्लिक से हैं, और ये एक तो अपने पाकिस्तानी है वजीदुल्ला नागरी, दूसरे हैं जैकू वीसेक एंड जो है पीटर मैसक, ये जनाब राकापोशी के ऊपर जो है वो कर रहे थे उसकी चढ़ाई कर रहे थे, वहां पे फंस गए, वहां से फिर इन्होंने मैसेज भेजा नीचे, फिर जो वहां पे गिलगित में और गिलगित बल्तिस्तान में फिर वो जो जब उनको मैसेज पहुंचा तो उन्होंने मिलिट्री का हेलीकॉप्टर लिया और इन लोगों की जान बचाई, इनको नीचे लेकर आए, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि इन्होंने हमसे ये पहाड़ी पे चढ़ने की माउंटेनियरिंग की इन्होंने हमसे इजाजत नहीं ली थी और परमिट नहीं लिया था, तो इसलिए इनके खिलाफ लीगल एक्शन किया जा सकता है, तो अब देखेंगे क्या होगा। ग्लेन पॉकनेल जो है न्यूजीलैंड के इंटरिम हेड कोच, वो अब आपको पता ही न्यूजीलैंड की टीम आने वाली है रावलपिंडी में खेलने के लिए जो है ओडीआई सीरीज, तो अब उन्होंने कहा है जी कि ये इसको इजी लेने की जरूरत नहीं है, न्यूजीलैंड के साथ जो है पाकिस्तान बहुत अरसे के बाद अब खेल रहा है तो वो भी जीतना चाहेंगे और हम भी जीतना चाहेंगे, 18 साल के बाद आ रहे हैं ना ये, तो वो कहते हैं जी वो भी जीतना चाहेंगे हम भी जीतना चाहेंगे, दोनों इंटरनेशनल टीमें हैं, तो अब देखेंगे क्या होगा। लेकिन ये जो मैचेस होने वाले थे ये होने वाले थे वर्ल्ड कप सुपर लीग के अंडर, लेकिन अब ये नहीं हो सकेंगे क्योंकि आपको पता है आईपीएल शुरू हो रहा है दुबई में, हमने ये पहले भी एक दिन खबर सुनाई थी, तो उस आईपीएल के लिए इंडियन जो है आईसीसी बीसीसीआई उसने सारे वो जो हैं डिसीजन रिव्यू सिस्टम्स डीआरएस वो सारे खरीद लिए हैं, एज अ रिजल्ट पाकिस्तान जो था आईसीसी अप्रूव डीआरएस सिस्टम नहीं ले सका, तो इसलिए अब उसको निकाल दिया गया है वहां से वर्ल्ड कप सुपर लीग मैचेस में से, और ये बस अब जो है सिंपल मैचेस अब ये कंसिडर किए जाएंगे। श्रीलंका के जो फास्ट बॉलर हैं आपको पता ही है कि 2014 का जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें बड़े उन्होंने मारके मारे थे, श्रीलंका की विक्ट्री में काफी इनका बड़ा हाथ था उसमें, उन्होंने आज कह दिया है लासित मलिंगा ने, इज जस्ट अबाउट 38 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने कहा जी कि अब मैं टी20 भी नहीं खेलूंगा, इससे पहले इन्होंने कहा था कि मैं जो है लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ गेम नहीं खेलूंगा, अब उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेलूंगा और मैं अपनी पूरी एनर्जी जो नेक्स्ट जनरेशन क्रिकेटर्स हैं उनके ऊपर मैं स्पेंड करूंगा। एंड एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज टुडे जनाब इज अबाउट ड्वेन ब्रावो, वो आज कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर जो कि था फाइनल का जो मैच था सेंट किट्स एंड नेविस के साथ जो उसमें ये 500th T20 मैच खेल रहे थे और 500 मैचेस इसके इनके अलावा जो हैं वो पोलार्ड ने जो हैं उन्होंने खेले हैं, तो अब इन्होंने अपना ही मेड अ डेब्यू इन 2006 और अब देखें जरा ये ऑलराउंडर कितना जो है वो हो गया है, और ट्रिनिडैड में ये पैदा हुए थे और T20 का स्पेशलिस्ट इनको समझा जाता है, तो बिग अचीवमेंट फॉर हिम जनाब। सो दीज आर आवर न्यूज टुडे सर,
दीज आर द न्यूज एंड बकिया की खबरें जो है इंशाल्लाह ताला
कल
आपके साथ पेश करेंगे हम, और अब क्या होगा
बस जी, अब आज तो आमिर का फेवरेट वेडनेसडे है ना।
हाँ जी, वेडनेसडे को वो क्या स्पेशल क्या करते हैं,
वो आजादी मनाते ना आज के दिन, मेरी जान छोड़ेगी आपसे इसके बाद तो वेंसडे जो है उसके लिए बड़ा स्पेशल डे होता है,
स्पेशल डे। थैंक यू सो मच.
थैंक यू जी, आई विल सी यू टुमारो
इंशाल्लाह. आप ऐसे जुड़े रहिए इंशाल्लाह ताला. अभी स्पॉन्सर्स के पैगामात के बाद फिर शाज़िद जी एंड आमिर आएंगे और एक रंगारंग प्रोग्राम लेके आएंगे. बकिया की खबरें इंशाल्लाह ताला कल 5:45.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
क्या आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है? अगर हाँ तो ये वक्त है कि आप घर पर कोलोन कैंसर का टेस्ट लें. और ये टेस्ट बहुत आसान है. आप अपना सैंपल लेकर मेल के जरिए भेज दें. हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ये आपकी सोच से भी ज्यादा आसान है. आप फौरन अपने फैमिली डॉक्टर से किट हासिल करने के लिए रब्ता कीजिए और www.ontario.ca/colon-cancer-check पर जाकर मजीद मालूमात हासिल कीजिए. ऑन्टेरियो गवर्नमेंट की तरफ से अदायगी की गई, पेड फॉर बाय द गवर्नमेंट ऑफ ऑन्टेरियो.
जस्टिन ट्रूडो बिलीव्स दैट वैक्सीन्स शुड बी मैंडेटरी फॉर ट्रैवल ऑन प्लेन्स एंड ट्रेन्स बिकॉज़ दैट्स हाउ वी विल प्रोटेक्ट आवर किड्स एंड गेट बैक टू नॉर्मल. बट कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस से दे वुड स्क्रैप दैट प्लान एंड वोंट इवन रिक्वायर देयर ओन कैंडिडेट्स टू गेट वैक्सीनेटेड. दिस इज नो टाइम टू बैक डाउन फ्रॉम डूइंग द राइट थिंग. लेट्स कीप प्रोटेक्टिंग आवर लव्ड वंस एंड ब्रिंग आवर इकॉनमी रोअरिंग बैक. Let's keep moving forward for everyone. Authorized by the registered agent for the Liberal Party of Canada.
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो. ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो. ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लाओ जी. तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी. आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी. एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी. क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप. 519-622-0660 या quicktrucklube.com. QTL, because we care.
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ. ਸਿੰਪਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ੁਲਕ ਤੋਂ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਿੱਸੇ ਦੀ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ $50 ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.simply.com/isbo. That's www.simply.com/isbo.
The Conservative Party has a plan for an inclusive economic recovery. We will support job growth by paying part of the salaries of new hires and make life more affordable by tackling housing prices. We will stand up for human rights and strengthen our immigration system. Read more at conservative.ca/plan. Authorized by the Chief Agent of the Conservative Party of Canada.
ਦੋਸਤੋ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਗਾਰਾ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਮਹਾਮੋਹਣੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ. ਨਗਾਰਾ ਰੇਡੀਓ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ WTOR 770 ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਗਾਰਾ ਰੇਡੀਓ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ WTOR 770 ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਿਆ ਕਰੋਗੇ. ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ 647-384-36, ਰਾਣਾ ਸਿੱਧੂ 905-915-84-84. ਨਗਾਰਾ ਰੇਡੀਓ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਓਨਲੀ ਔਨ 770.
इस आलमी वबा के दौरान हमारे बच्चों ने साबित किया कि वो कितने मजबूत, साबिर और साबित कदम हैं. लेकिन अब उनके लिए दोबारा यादें बनाने का वक्त है. खानदान और दोस्तों के साथ, टीम अराकीन के साथ, साथियों के साथ कोविड 19 वैक्सीनेशन से बच्चों को मदद मिल सकती है दोबारा बच्चे बनने में. अपने बच्चों और उनके आसपास के लोगों के तहफ्फुज में मदद करें. दस्तियाबी पर अपने बच्चों की वैक्सीनेशन बुक कराएं. हुकूमत कनाडा की तरफ से एक पैगाम.
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर, परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने. उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे.
SNS Lawyers को इन्हें सारे सवालों के जवाब ते तुहाड़े हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने ले या सलाह लेन ले आज ही SNS Lawyers नू कॉल करो
416-655-2000।
कोविड 19 करके सारा काम ऑनलाइन हो गया, ग्रोसरी ऑनलाइन हो गई, ट्यूशन ऑनलाइन हो गई, और ता होर कल मेनू रिया ने दसिया कि सोडी फर्नीचर वाले भी हुन ऑनलाइन फर्नीचर सेल कर रहे हैं।
बिल्कुल ठीक सुनिया, ते हुन इना दा स्टोर भी खुल गया है।
ब्रम्टन दे सब तो वड़े फर्नीचर स्टोर्स विचों एक सोडी फर्नीचर ते हुन कोविड 19 दे दौरान इना दी वेबसाइट sodifurniture.com ते जाओ अते अपनी पसंद दा फर्नीचर सिलेक्ट करो। स्टोर विच आके सेम फर्नीचर देखो अते सेम प्राइस ते लो। इना दी कैनेडी लोकेशन हुन खुल चुकी है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 9058747171।
Tele Time Electronics, LEDs और Home Appliances की Hottest और Branded Range के साथ 0% Finance, Guarantee on Lowest Prices और Free Delivery in GTA. तो इंतजार कैसा? अभी विजिट करें Tele Time Brampton, 280 Rutherford Road या Springdale Square Shopping Center या Etobicoke, 1770 Albion Road या 9909 Markham Road. मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9054551666। टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स।
हर साल अर रहमान वेलफेयर फाउंडेशन सादिकाबाद रहीम यार खान पाकिस्तान में एक ही जगह पर 150 से जायद यतीम और नादिर बच्चियों की इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम तश्कील देता है। इस साल भी अर रहमान वेलफेयर फाउंडेशन इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम मुनाकिद करने जा रहा है जो नवंबर दिसंबर में मुनाकिद किया जाएगा। एक बच्ची की रुख्सती पर तकरीबन $1,000 का खर्चा आता है। आपकी दी हुई डोनेशन इज्तिमाई शादी प्रोग्राम में इस्तेमाल होगी और टैक्स रसीद भी फराहम की जाएगी। आपसे इल्तिजा और अपील है कि इस नेक काम में दिल खोल कर मदद करें। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 416-471-9636 या इनकी वेबसाइट पे विजिट करें www.awfca.org। अर रहमान वेलफेयर फाउंडेशन।
बाबास पिज्जा एंड विंग्स, हॉट एंड फ्रेश पिज्जास की वैरायटी या अपनी पसंद का पिज्जा, चिकन चर्रा, क्रिस्पी चिकन, तंदूरी चिकन, चिकन विंग और मजेदार फ्राइज, पोटैटो वेजेस, पुटीन, ऑनियन रिंग, गार्लिक ब्रेड, पेंजोस और बहुत कुछ। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए विजिट कीजिए babaspizza.ca या कॉल करें मॉल्टन लोकेशन 9056737786 या ब्रैम्पटन लोकेशन 9057906786। Baba's Pizza and Wings।
Mesmerize Opticals, sunglasses, eyeglasses and contact lenses.
Doctor on site, get your eyesight checked. Mesmerize Optical.
Markham and Shepherd, 1789 Markham Road, 416-335-0786.
कहते हैं कि माया को खींचे माया कर कर लंबे हाथ। हैरी सॉन द मेजेस्टिक मॉर्गेजेस के साथ रेजिडेंशियल कमर्शियल मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग आपने करनी है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप ताल्लुक आता है इनके, आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त भी हो जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे। हैरी सॉन जी बड़ी कमाल की तिकड़म लड़ा सकते हैं। बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का रेंज हो जाएगा $228 से $1,000 महीना कैसे बचा सकते हैं। कॉल हैरी सॉन Now 647-228-1000 Harry Sond of Majestic Mortgages.
सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जन्म कहीं ना कहीं, सोच बेचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं।
आमिर अंशाजिया जनाब, आप कैसे हैं? आज तो आमिर की आजादी का दिन है, आपको पता ही है। आज है वेडनेसडे, यानी ویسے وینزڈے ہوتا ہے ہمیں پتا ہے، آپ ہمیں اتنا جاہل نہ سمجھیں، لیکن آپ کو تو پتا ہی ہے ہم ذرا مخولیے قسم کے لوگ ہیں، تو مخول ہم کرتے ہیں وہ اس لیے کہ ذرا ہم بھی خوش رہے ہیں اور آپ لوگ بھی خوش رہے ہیں جی. تو وینزڈے کا دن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے عامر صاحب کے لیے، آج وہ مناتے ہیں، یعنی آج جس بھی مہینے میں وینزڈے آئے گا نا جب بھی کبھی، تو یہ 14 اگست اس دن منائیں گے جو ہے عامر صاحب. خیر کوئی بات نہیں ہے، ہم ان کی 14 اگست جو ہے اس کی ایسی تیسی پھیرتے رہتے ہیں آپ دیکھتے ہی ہیں. تو ابھی جو ہیں عامر صاحب جو ہے ذرا تھوڑا سا گیئر اپ ہو رہے ہیں، تو جیسے ہی وہ گیئر اپ ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم جو ہے عامر سے بات جو ہے چیت آگے چلائیں گے. اچھا جناب، آپ جو ہیں آپ نے مجھے کہا کہ بھائی مردوں کے کچھ گرومنگ ٹپس دے دیں، کیونکہ مردوں کے بارے میں آپ ٹپس جو ہیں وہ کم دیتی ہیں. تو میں نے کہا جناب یہاں پہ مردوں کی گرومنگ کے بارے میں کچھ سننا ہی نہیں چاہتا ہے. جب بھی کبھی میں کہتی ہوں بھائی مرد بھی پارلر جاتے ہیں، ماجد بھائی کہتے ہیں وہ کون سے مرد ہیں مجھے بتاؤ جو پارلر جاتے ہیں. بھائی جاتے ہیں سٹائلش قسم کے جو لوگ ہیں، یہ جو بچے ہیں خاص طور پہ ینگسٹر، یہ سب جاتے ہیں. کوئی اپنے نیلز، اگر آپ اچھے پارلر میں ڈاؤن ٹاؤن میں جائیں آپ کو نظر آئیں گے، کوئی اپنے نیلز بنوا رہا ہے پیروں کے، کوئی ہاتھ کے، سب کرواتے ہیں پیڈی کے. اور گندی ایڑیاں کس کو اچھی لگتی ہیں؟ تو ایڑی اگر آپ کی صاف ستھری ہوگی، پیر اچھے ہوں گے، سب کو اچھے لگیں گے نا. تو چاہے عورت ہے مرد ہے اس میں ڈسٹنکشن کیسے ہوئے گا جناب؟ تو اچھا، تو اس کے اندر جو سب سے جو پہلی بات مردوں کے لیے جو ہے، جو اس کا کہ میں ذکر ضرور کرنا چاہتی ہوں، کہ بھئی آپ اپنے بال ضرور پراپرلی کٹوائیں. سب سے تو بڑی بات یہی ہے کہ یہ جو جیسے بنے ہوتے ہیں نا وحوش سے، جن کو کہتے ہیں پنجابی میں وہ وحوش سے نا بنے. ویسے تو جس وقت یہ بند تھا سارا کچھ انڈر کووڈ، تو پھر تو آپ کو کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی، آپ کچھ بال بال کٹا ہی نہیں سکتے تھے، لیکن اب تو کھل گئے ہیں. تو پلیز اپنے بال جو ہیں ایک چیز وہ ضرور اس کو کیمپٹ رکھیں، انکیمپٹ نہ رہنے دیں. اس کے علاوہ اگر آپ کی داڑھی ہے تو اس داڑھی کا بھی تھوڑا خیال رکھیں، کیونکہ داڑھی بھی اگر ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ جا رہی ہے تو وہ بھی اچھی نہیں لگے گی. تو اس کو بھی ذرا جو ہے ٹھیک سے آپ وہ کر کے اور اپنی داڑھی کے اوپر بھی تھوڑا کانسنٹریٹ کریں. اس کے علاوہ بہت ساری اچھی چیزیں آ گئی ہیں مارکیٹ کے اندر لڑکوں کے لیے بھی. آپ بہت اچھے موئسچرائزنگ کریمز لا سکتے ہیں، اور اگر منہ پہ کوئی وہ جو ہیں دانے وانے ہیں پلیز ڈاکٹر کو ضرور کنسلٹ کریں اور کوئی اپنے جو ہے پمپلز کے لیے دوائی لیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ لیمو پانی پی سکتے ہیں اپنی سکن کو کلیئر رکھنے کے لیے. اور میں تو جناب ہمیشہ سستے اور ٹکاؤ آپ کو ٹپس دیتی رہتی ہوں، آپ کو پتا ہی اگر دانے بہت زیادہ چہرے پہ ہو گئے ہیں آپ کو جلن تو ہوئے گی، تکلیف ہوئے گی، لیکن جو ہے لیمن ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے، جو کہ آپ کی والدائیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں